الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. عزیز گرامی مولانا ابو الحسن صاحب نے کرم فرمایا اور میں آپ حضرات کی ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. تقدیریں جو ہونی تھی ہو گئی اور آپ نے جی بھر کر کے سنا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض وہ ہے یعنی اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا. اس کائنات ہستی میں بے شمار اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے نعمتیں آپ کے استعمال کے لیے بنائی ہیں اور کسی چیز کا استعمال آدمی جو کرتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے بدن میں اس نے الگ الگ پارٹس بنائے. پھل وغیرہ بنایا ہے جس میں ذائقہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے ذائقے اور ٹیسٹ کو جاننے کے لیے اور اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس نے آپ کے منہ میں زبان بنا دی اور اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ جس میں جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے زبان اس کا چکھ کر فیصلہ کر دیتی ہے. مرچی ہے یا کیلا ہے، میٹھا ہے یا تیکھا ہے، یہ صرف زبان بتاتی ہے. ہاتھ سے چھو کر کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کان میں مرچی ڈال کر کے آپ مرچ کا تیز پن اور تیکھا پن نہیں معلوم کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالی نے زبان میں ایک سینسر لگا دیا ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قوت ذائقہ. تو ذائقہ کو جاننے کے لیے، ٹیسٹ کو سمجھنے کے لیے صرف زبان کا ہی استعمال کرنا پڑتا. آنکھ سے ذائقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کان سے ذائقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سے ناک سے ذائقہ نہیں معلوم ہوتا ہے. ایک سینسر ہے یہ جس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں. اللہ تعالی نے دوسرا سینسر، دوسرا حس آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ایک حصہ ناک کا بنا دیا ہے. ये नाम अल्लाह की नेमत खुशबू वगैरह को महसूस करके उससे लज्जत हासिल कराती है। ये कान का काम नहीं, जबान का काम नहीं, आंख का काम नहीं है। शमामतुल अंबर है ये नाक ही बताएगा, इतने मजमूआ है ये नाक ही बताएगा, ये बदबू है ये नाक ही बताएगी। बदबू से बचना, खुशबू से रगबत हासिल करना, इसके लिए इस पूरे वजूद में सिर्फ नाक ही का इस्तेमाल करके और खुशबू की तरफ रगबत करोगे, बदबू से परहेज करोगे। ये है सेंसर, इसको अरबी में कहते हैं कुव्वत शाम्मा, सूंघने की। ऊपर थोड़ा सफर कीजिए तो ये दो आंखें अल्लाह ने बनाई, इसमें सेंसर देखने का फिट कर दिया। ये लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये गोरा है, ये काला है, इसका डिजाइन क्या है ये आंख ही बताएगी। इसको कहते हैं कुव्वते बासिरा। फिर आप साइड में आ जाइए, ये कान है, गधा बोल रहा है ये कान फैसला करेगा, मुर्गे की आवाज है कान फैसला करेगी, ये तो करेगा ये कान, ये सुनने की ताकत रखता है जिसको कुव्वते सामिया कहते हैं। और पांचवा हिस, पांचवा सेंसर पूरे बॉडी में अल्लाह ताला ने फैला दिया है, ये छूने की कुव्वत है, ठंडा है कि गर्म है। ये जबान भी बताएगी, कान भी बताएगा, आंख में डालो तब भी, पैर का तलवा अगर ठंडे और गर्म चीज पर पड़ जाए तो वो भी बताएगा। ये छूने की कुव्वत पूरे बॉडी में अल्लाह ने इसका नेटवर्क फैला दिया है। ये हवा से खमसा है, फाइव सेंसर है जो इंसान के वजूद में रब ने फिट कर दिया। चार सेंसर तो सिर्फ एक ही मोहल्ले में, अलग अलग नहीं है, पांचवा पूरे वजूद में फैला हुआ है, लेकिन चार सेंसर जो है ये सिर्फ आपके चेहरे पे रब ने फिट कर दिया है और सब अपना अपना हक अदा कर रहे हैं। नाक ने कभी ये नहीं कहा कि मैं देखना चाहती हूँ, कभी कान ने ये नहीं कहा कि मैं चखना चाहता हूँ, सब अपना अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी हमारी परफेक्ट है। अगर नाक सूंघना छोड़े देखना चाहे तो याद रखो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चारों एक ही जगह पर बसाए गए हैं, रखे गए हैं, लेकिन दूसरा एक को एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये इंसान को रूहानी तौर पर ये सबक दिया जा रहा है, रहो एक जगह लेकिन अपना अपना हक इस्तेमाल करते रहो, कभी तुम्हारा माशरा और लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा।
अल्लाह
समझ, हाँ तुम अगर डिस्टर्ब हो गए आंख अगर फूट गई तो आप डिस्टर्ब हो जाए, कान बहरा हो गया लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ये पांचों हवास अगर परफेक्ट है तो तुम्हारी जिंदगी खुशगवार होगी। ये अल्लाह ताला ने इस आलम में जो नेमतें बनाई हैं उनको समझकर यूज करने के लिए आपको हवासे खमसा फाइव सेंसर अता फरमा दिए। और अगर एक सेंसर भी डिस्टर्ब हो गया तो शय की हकीकत को समझने के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी, बल्कि उस शय की हकीकत को समझना दुश्वार। एक लतीफा है कि एक देहात में हाथी गया, उस देहात वालों ने कभी हाथी देखा नहीं था, खुश हो गए मैदान में हाथी खड़ा घूम रहा है, छोटे बड़े मर्द औरत सब मैदान में जमा हो गए हाथी देखने के लिए, देख रहे हैं बाबा हाथी ऐसा होता है। एक बड़े मियां थे जिनका आंख का सेंसर नहीं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किया अपने पोते से कि मुझे भी ले चलो मैं भी हाथी देखूंगा। पोते ने कहा दादा आपका तो ये सेंसर ही नहीं है, आंख है नहीं, हाथी देखेंगे कैसे। कहा बेटा टटोल करके छू करके देखूंगा कम से कम हाथी कैसा। पोता लेकर के गया था, हाथी के पीछे लग करके खड़ा कर दिया। हाथी की आदत है दुम को हिलाना, बड़े मियां के हाथ में दुम आ गई। जोर से बोले, बेटा मैं समझ गया हाथी कैसा होता। लोगों ने, कैसा हाथी है? बोले दुम रस्सी जैसे है। हाथी और रस्सी कोई निस्बत है? ये बड़ा गलत फैसला क्यों किया? इसलिए कि जिस चीज को देखकर आदमी उसकी सही पोजीशन मॉडल और हकीकत को समझता है, वो सेंसर इसके पास नहीं था। हाथ से दुम को पकड़कर फैसला करता है कि ये रस्सी जैसा है। एक मनचला लड़का था, उसने धक्का दिया था, हाथी रस्सी जैसा नहीं है। कहां हाथी कहां रस्सी? तो उसका पैर उसके हाथ में आ गया और उसको यूं चहलाकर टटोल कर कहता, बेटा अब तो समझ गया आप कैसा है। कहा, हाथी पिल्लर जैसा। बोलो, क्या हाथी पिल्लर जैसा है? ये जजमेंट, ये फैसला गलत है, सिर्फ इसलिए कि उसका ये देखने का सेंसर नहीं था। उसका हाथ जब पीठ पर पड़ा हाथी के, तो कहने लगा तख्त कैसा है। इसी तरह हाथी के हर उस्म को वो हाथी समझ रहा है, जबकि हाथी वो हाथी नहीं है। देखने वाला बताएगा कि हाथी है, चार पैर है, एक सूंड है, बड़ा कान है, दुम है, इन सारे मजमूए का नाम हाथी है। ये कौन सही फैसला करेगा? जिसके जिसकी दोनों आंखें मौजूद हो। अगर दोनों नहीं है तो कम से एक तो मौजूद है, जिससे वो देखकर हाथी के दिल डोल को वो समझ सकता है। दोस्तों, यह है हकीकत को न समझना। वो सेंसर अगर मौजूद है तो समझ लेगा, वरना नहीं समझा। ये हर इंसान में कॉमन सेंसर पांच है, लेकिन सुनो, मुसलमान के पास भी ये पांचों सेंसर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सेंसर ईमान का भी अता फरमाया। जिस तरह से आंख से देखकर हाथी को समझते हैं, इसी तरह ईमान का सेंसर मौजूद है तो मुस्तफा को मुस्तफा की शान के मुताबिक समझेगा। नबी को अपने जैसा नहीं कह सकता, नबी वो है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अल्लाह की शर्त बदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान कोई शान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये सेंसर था ईमान का और तजदीद का, जिससे मुस्तफा के मकाम शान मकाम इज्जत को समझकर दुनिया में ऐलान किया है। और वो अंधा है जो कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है, वो कहता है मुस्तफा मेरे जैसे हैं। इसमें ज्यादा हुज्जत तकरार की जरूरत नहीं। अंधे ने अगर हाथी को रस्सी कह दिया तो खामोश रहो, रस्सी है नहीं, इनकार कर दो। उसने ये गलती इसलिए की है कि उसके पास आंख नहीं है। मुस्तफा को अपने जैसा कहा, ये फैसला हो गया, इसके पास ईमान नहीं। इसके पास ईमान नहीं है, दलील की कोई जरूरत नहीं है। फैसला देख लो, गलत फैसला किया तो जिस चीज को जिस सेंसर से समझने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, अगर फैसला गलत है तो समझ जाओ ये सेंसर इसके पास नहीं है। अगर सेंसर होता तो हाथी को रस्सी और पिल्लर नहीं कह सकता। ईमान अगर होता तो मुस्तफा को अपने जैसा नहीं कह सकता। ये पता चल गया कि इसके पास ईमान ही, जब पता चल जाए ईमान ही नहीं है, तो फिर उसके पास बैठना उठना ये सब ईमानी और कुरानी पैगाम के खिलाफ है। रब फरमाता है, फला तफुत बादज जिक्रा मअल कौमिल ज़ालिमीन। ऐ लोग जब पता चल जाए कि ये अपनों में से नहीं है, ये जालिम है, यानी इसका ईमानी शेर खत्म हो चुका है, जब ये पता चल जाए तो फिर ऐसों की मजलिस में बैठना एक ईमानी शेर वालों के लिए किसी तरह जायज नहीं है। कुरान के खिलाफ, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। आज ये जो बिगाड़ पैदा होता है, अगर उस अंधे के फैसले को लोग मान लें, सेंसर रखने वाले के हाथी रस्सी और पिल्लर जैसा है, तो वो आदमी उस बूढ़े की बात पर एतमाद करके हाथी को अगर रस्सी कहेगा, पिल्लर कहेगा, तो कोई समझदार आदमी उसको अकलमंद नहीं, बल्कि वो ये समझेगा कि इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, सेंसर है और हाथी को रस्सी कहता है। फिर वो बोलेगा हाथी रस्सी नहीं है, बोले इतनी उम्र वाला 80 साल का, इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसने कहा है तो मैं क्यों न मानूं। बोलो इससे बड़ा पागलपन इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कहीं आपको नजर आएगा। दोस्तों, ईमान को संभालने के लिए ईमानी सेंसर को स्ट्रांग बनाना है, और अगर उसमें कहीं कमजोरी आई तो बरेली का वर्कशॉप है, वहां पर बड़े बड़े मैकेनिक हैं, सेंसर अगर काम नहीं करता है तो मैकेनिक को बुलाओ। अगर हुकूमत ने एयरपोर्ट पर टूर के अंदर सेंसर रखा है कि खींचने खोलने की जरूरत नहीं है, 7 फीट पर पैसेंजर होता है और ये बड़े प्यार से अपनी आगोश खोल कर कहता है कम इन माय डियर, दरवाजा खुल गया, आप चले गए, बंद हो गया, अब वो जमाना गया। अगर वो दरवाजा खुलता है और रुक जाता है तो फिर मालूम हुआ कि इसके सेंसर में खराबी आ गई है, अपने कानी की जरूरत पड़ जाएगी। इसी तरह ईमानी सेंसर जब किसी दीवी हकीकत को समझने में उस परेशानी उसको होती है, तो ये समझ लो इसके लिए अब कायदे शरीयत की जरूरत है। अब इसके लिए बरेली के किसी अच्छे मैकेनिक की जरूरत है, अगर वहां नहीं तो उसके ब्रांच बहुत से हैं, उस ब्रांच में पहुंच जाओ, ये भी एक ब्रांच है, मौलाना अबुल हसन साहब है मैकेनिक है, उन्हें पकड़ के लाओ, नागपुर एक ब्रांच है, वहां से बुला लो, हमारे पास वो पलक माना भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, सब है, हम निकाल निकाल करके और उसके सेंसर में जो एंड बेल्ट आ गया है उसको इंशाअल्लाह ठीक करेंगे, और फिर भी ठीक नहीं है तो हमारे पास हथौड़ी है, जरा उसको जर्ब लगाएंगे और थोड़ी देर के बाद वो ठीक ठाक हो जाएगा, सेंसिटिव बन जाएगा, फिर हकीकत को समझने में उसे कोई दुश्वारी नहीं होगी। हर चीज की हकीकत को समझने के लिए रब ने तुम्हें सेंसर अता फरमाया है, और गौसे आजम को समझने के लिए, गरीब नवाज के समझने के लिए रूहानी और ईमानी सेंसर अता फरमाया। अब एक सेंसर बिगड़ा हुआ मेरे पास आया, बोले ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपकी जमात के हुए लिखते हैं और बयान करते हैं कि एक कटोरे के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी को भर लिया था और कना सागर खुश्क हो गया था। कहने लगा ये कॉमन सेंस के खिलाफ। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी चीज है, ये कॉमन सेंस जो है ये 5 है, कॉमन सेंस के खिलाफ हमारे हैं, लेकिन रूहानी और ईमानी सेंस के खिलाफ नहीं है। जिसके अंदर रूहानी सेंस है वो इसको एक्सेप्ट करता है, मानता है। कहा इसको समझाना भी तो चाहिए आप लोगों को कि ये कैसे इम्पॉसिबल था और वो पॉसिबल बन गया, नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना दिया। मैंने पूछा तुम्हारे पास लैपटॉप है? इन्हें लगा घर पर मोबाइल है? कहा हाँ, उसमें इतना बड़ा मोबाइल है, स्मार्टफोन। पहले आदमी स्मार्ट हुआ करता था, फोन भी
चेहरा ही समाप्त हो
गया। जमाना बदलता है और जब जमाना बदलता है तो बोली भी बदलती है, ये बेचारा स्मार्ट हो गया। नौजवान के स्मार्टफोन जो है, स्मार्टनेस जो है उसकी अब खत्म हो गई है। अब इसे देखता है, पहले नौजवान स्मार्ट होता था, चढ़ते थे लोग उसको दूर तक देखते थे। आज तो कौन स्मार्ट है कौन नहीं है उसे कोई परवाह नहीं। एक स्मार्ट मस्जिद में उसी को देखेंगे, मदरसे में उसी को देखेंगे, बीवी इधर बैठी रहेगी लेकिन वो उसी को देखेगा। किसी का स्मार्टफोन उसकी इस नजर को पसंद, जमाना बदल गया, खुराफात हर तरफ फैल के जा रही है। अल्लाह अपना रहम फरमाए, इसने स्मार्टफोन निकाला। बोले बे, मैंने कहा कोई इसमें मशीन है? उसने यू सेंड किया, पेश किया और उसके बाद एक मशीन नजर आया। मैंने कहा यहाँ ये तो बहुत बारीक बारीक इसके हरूफ है, ये मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अभी बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा है। मैंने कहा तुम्हारी उंगली में बहुत बड़ी करा हुआ था, छोटे को इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब बहुत बड़ा है इसको तरह छोटा तो कर दे। फिर उसने यूं किया, हुक से छोटा हो गया। मैंने कहा तेरे इस बदकीदे की उंगली में ये कहानत है कि छोटे को बड़ा कर दे और बड़े को छोटा कर दे, तुम्हारे अंदर ये सेंस है? कहता हाँ है। तो मैंने कहा मेरे खादा के उंगलियों में, उनके प्याले में, उनकी जबान में रब ने ये ऐसा बलायत का शेष लगा दिया था कि छोटे को बड़ा कर दे और बड़े को छोटा कर दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह। खाजा ने साहब इतने बड़े पानी को अपने सेंसर के जरिए जो उसको रिड्यूस किया तो एक प्याले में भर दिया। बड़ी बड़ी तहरीर को साइंसदानों ने मशीन के जरिए रिड्यूस किया तो वो मैक्रो डॉट बन गया। और जब कहीं पर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ये बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है तो एक पॉइंट होता है उसको रिलीज करते हैं तो पूरा जंगम पेट नजर आता है। मिनिस्टर साहब में नजर आते हैं 10 लाख रुपया दिया। इतने बड़े नुक्ते में ये यहाँ कहाँ से छुपा हुआ था? ये वो सेंसर है कि बड़े को छोटा कर दे और छोटे को बड़ा कर दे। जब तुम्हारी जमीन मशीन ये कर रही है तो मेरे गौसे पाक और मेरे गरीब नवाज जिन्होंने अल्लाह के नूर के सेंसर से अपने वजूद को बारा बांध कर दिया है, अगर ठोकर लगाते हैं तो सड़ा गड़ा मुर्दा जिंदा हो जाता है। बड़े को खींच करके सिकोड़ देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, छोटा हो गया। मेरे गरीब नवाज ने प्याला में रिड्यूस करके पानी को भर दिया और जब सब लोग टामक टोक करने लगे तो फिर उसी प्याले के पानी को रिलीज कर दिया, छूटा कर दिया, आजाद कर दिया, पाना सागर बन गया। खुदा की कसम उसका मुंह लटक गया। मैंने कहा जब ये आपकी उंगली का ये इशारा है रब ने सारी कायनात की हकीकत को समझने के लिए 5 सेंसर अता फरमाए हैं और जब ये सेंसर खराब होता है तो हकीकत निगाह से ओझल हो जाती है। इसी तरह मुसलमान को रब्बुल आलमीन ने ये इल्म और ईमान और मोहब्बत रसूल का सेंसर अता फरमाया है। जब तक ये सलामत रहेगा हक की पहचान होती रहेगी और बातिल का मकरूह चेहरा हमारे सामने आता रहेगा जिससे हमारे अंदर नफरत पैदा होगी। इन मदारिस का मकसद यही है कि इन बच्चों में इल्म का, ईमान का, मोहब्बत रसूल का सेंसर फिट कर दिया जाए। ये जैसे ओरिजिनल थे वैसे ही इनको अगर आप पाल करके और इनसे फायदा हासिल करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा। ये लोहा है, मिट्टी ने काला लोहा अल्लाह ने पैदा कर दिया है, वैसे ही ये माइक नहीं बना है। उस लोहे को निकाल करके रोलिंग मिल में भट्टी में इसे जलाकर इसके शब्द को अलहदा किया गया। फिर ये कारखाने में माइक बनाने की फैक्ट्री में आया, इस पर पॉलिश हुई और इसके जिस साइज का बनाना है वो साइज उसको रखा बनाया गया, डाई में ढाला गया, उसमें ये वो ये सब लगाया, तब जाकर के ये स्टेज पर आया है। इतना बड़ा ठेला जैसा फायदा होता है वैसे ही ला करके स्टेज पर रख दो तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसे संभालना पड़ता है, हालना पड़ता है। जैसी लकड़ी अल्लाह ने जंगल में पैदा की है वैसे ही उसको इस्तेमाल नहीं करते। सब लकड़ियों को बनाया गया, काटा गया, संवारा गया, ताका करके वो इस्तेमाल के लायक हुई। इसी तरह इंसानी जंगल में ये बच्चे पैदा किए, जैसे पैदा हुए वैसे छोड़ दो आवारा बनेंगे, होटलों में कपसी मांगेंगे, बसों में जेब काटा। और अगर इनको जामे गौसिया रस्मिया में दाखिल कर दिया गया तो अब इनकी ढलाई होगी, इनकी मजाई होगी, इन पर पॉलिश की जाएगी, मशरके आला हजरत का इन पर भाषा चढ़ाया जाएगा। अब वो निकलेंगे तो ये फुटपाथ शॉप नहीं होंगे, मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के दीन का पैगाम देंगे, मसल्ले रसूल पर खड़े होकर पढ़ाएंगे। ये इनको हैसियत क्यों मिली? ये मदरसा छोड़ करके ये काम नहीं हो सकता है, होटलों में और बड़े बड़े कलबों में ये काम नहीं हो सकता है। ये मदरसा, ये छोटा सा मदरसा दिख रहा है, काम बहुत बड़ा हो रहा है। इन्हें संवारा गया, ढाला गया, सजाया गया, अब ये मुसल्ले पर खड़े हैं। बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े शेख और बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे तो ये नहीं कहेंगे बेटे हट हट आज मैं तरावी पढ़ाऊंगा। इनको बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, वो तरावी कैसे पढ़ाएंगे? ये बच्चे रहेंगे और जहां इनका पैर होगा और जब ये सजदा करेंगे तो बड़े बड़े मिनिस्टरों की का सर वहां झुकेगा जहां इनका तलवा, इनके पैर के सामने झुके हुए हैं। सजदा अल्लाह का होता है, इख्तदा इनकी की जाती है। आखिर ये गरीब बच्चे, झोपड़पट्टी में रहने वाले माँ बाप के बच्चे, बिहार और यूपी रह के रहने वाले यहाँ आए, आज उनके सर पर ताज है। आपके किसी सर पर उलमा ने दस्तारबंदी नहीं की है, ये आपको पावर कराया जाता है। छोटा गरीब मत देखो, दिल में दीन का सेंसर लेकर आज ये आगे सब उलमा पीछे बैठे, इनको आगे आता ये इनका एजाज है, ये इनका इकराम है। इनकी जिंदगी कितनी संवरी हुई है, ये तो संवर गए, बन गए। हदीस पाक में है जो बच्चा यहाँ अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह शुरू करता है और उसका बाप अगर गुनहगार है तो कब्र में अल्लाह ताला उसे नूर का ताज पहना दिया और कयामत में तो फरमाया गया है नूर की कुर्सी बिछाई जाएगी और उस पर इनके माँ बाप को और इनको बिठाया जाएगा। मैदानी महशर वाले पूछे क्या ये अंबिया है, कहेंगे नहीं ये नबी नहीं है। तो क्या औलिया है, लोग कहेंगे वली नहीं है। तो आखिर ये कौन है, तो फरिश्ते फरमाएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इल्मे दीन के लिए वक्फ कर दिया था और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इल्मे दीन को अपने सीने में बंद कर लिया था। आज रब ने उनकी ये शान बढ़ाई है कि लोग पूछते हैं क्या अंबिया है, क्या औलिया है, उनके चेहरे पर कितना नूर होगा, कितना नूर होगा, खुदा की कसम हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लोगों इन बच्चों की जिंदगी अब कारामत जिंदगी हो गई है। हम ये भी कहते हैं आप डॉक्टर मत बनाइए, डॉक्टर का डॉक्टर की भी जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इल्म व इमान, इल्म अल अज्ञान व इल्म अल अवदान। ऐ लोगों, दो दुनिया के उलूम में सबसे अहम इल्म दो इल्म है, इल्म अल अज्ञान दीन का इल्म व इल्म अल अवदान और बॉडी का इल्म यानी मेडिकल साइंस, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. یہ بچے اندر کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, اور ڈاکٹر باہر کا جو باہر کی تکلیف ہوتی ہے بدن کی اس کا ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کرتا ہے, علاج کرتا ہے. ان دونوں کی ضرورت ہے, اندرونی اصلاح بھی چاہیے اور بات بیرونی صحت بھی چاہیے, تب انسان کی زندگی صحیح معنوں میں ایمانی زندگی ہوتی ہے. پروردگار عالم ان بچوں کے علم کو, ان کے فضل کو عام اور تام فرمائے. انہوں نے آج قرآن مجید اپنے سینے میں بھر دیا ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کل سبیل سبیل مستقر. ہر چھوٹی بڑی چیز اس کتاب میں اللہ نے لکھ دی ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ نے لکھ دی. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. غالب کا کوئی شعر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے, آپ سن لیں گے یہاں یہ کلام ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں, مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون کا ہوگا. کوئی شاید ایسی بے عقلی کی بات کر سکتا, وہ بولتا ہے کہ مکھی کو گارڈن میں مت جانے دینا. اگر مکھی گارڈن میں گئی تو یہ پتنگے پروانے ان کا مرڈر ہو جائے گا. مکھی ادھر گئی تو اس کا مرڈر کیسے ہوگا؟ اس میں لنک کیا ہے, تعلق کیا ہے؟ بولے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جب ہم سمجھا دیں, دیکھو مگس کہتے ہیں, یہ عام مکھی کو نہیں کہتے ہیں. مگس کا مطلب یہاں ہنی بھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, شہد کی مکھی. اس کو گارڈن میں مت جانے دینا, پابندی پرتبند لگا دینا, کیونکہ یہ اگر گئی گارڈن میں تو وہاں کے پھل اور پھول کا رس چوسے گی, اور جب رس اور پھول کا رس چوس کر آئے گی تو اپنے چھتے میں آ کر کے وہ اس کو تھوکے گی, اگلے گی, اور جب وہ شہد بنے گا تو اس شہد سے موم بھی تیار ہوتا ہے, اور جب موم بنے گا تو اس موم سے کینڈل اور موم بتی بنے گی, اور جب موم بتی بنے گی اندھیرے میں جلائی جائے گی تو یہ پروانے آ کر کے جلیں گے. اس لیے شاید کہتا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے. اتنی تفصیل کی جب ایک انسان کا کلام سمجھ میں آتا, اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس کا فرمان سمجھنے کے لیے یہ چلتے پھرتے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو وہی اس کے کچھ تھوڑے بہت احکام کو اور رموز کو اور بھیدوں کو سمجھ سکتا ہے جو مشکات نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے نکیل کی رسی غائب ہو جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ میری رسی کہاں. فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے صدقے میں مجھے وہ علم دیا ہے قرآن کھول کر کے, اور جب میں آیتیں پڑھوں گا تو اس میں کوئی نہ کوئی آیت کا مطلب ایسا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے نکیل کی رسی کہاں پڑھوں گی, میں جا کر کے وہاں سے لے لوں. وہ علم دیکھ لیجیے, جب حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ علم ہے قرآن کے بارے میں تو مصطفیٰ کا علم کیسا ہوگا؟ ادھر جانتے ادھر نہیں جانتے, یہ وہاں بھی کہتا ہے تو کیسے جانتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, اس سے ثبوت مانگو اور وہ ثبوت نہ دے سکے گا. تو آج ایک ایسا کورس, ایسی کتاب جس میں کائنات کا سارا علم جمع کر دیا ہے رب نے, وہ قرآن ان کے سینے میں رب نے 30 بار جمع کر. اب ان کی حیثیت بڑی اونچی ہو گئی. کورس جتنا جامع اور مکمل ہوگا پڑھنے والا اتنا ہی جامع اور مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے علمی فیضان کو عام تام رکھے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اب کھیل کود میں گنوا کر کے, اپنی زندگی گنوا کر اسے भूलने का रास्ता न निकाले, रोज पढ़े, दौड़ करे, ऐसा कि अगर नींद से उठा कर पूछा जाए हाफिज साहब ये आयत किस बारे में है, तो आंख मलते हुए ये बलिया कह देंगे दसवें पारे में है, पांचवें पारे में है, ऐसा याद करो कि भूलने न पाए। कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद जो भूलता है उसकी वजह ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में उसे अल्लाह ताला अंधा उठाएगा। अल्लाह ताला इस निशियान की आफत से हर हाफिज को महफूज फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें अच्छा परफेक्ट मजबूत मुस्तहकम हाफिज बनाए और इनके इल्म में हम फरमाए और इस दारुलूम को नजर बस से बचाए, मुसलमानों के जहनों फिक्र में ये बात डाल दे कि इसकी हर बूंद के हिफाजत करते रहे, इसका ताउन करते रहे। वमा